संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। हरि सो जगवस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंत, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। प्रथम श्रोता आप हैं श्री राधे श्याम सीताराम, दो जो हैं रसखान, आपके सभी भक्तों संतों के चरणों में प्रणाम। राधे राधे, सभी भक्तों को प्रणाम। आज चरित्र करते हैं श्री विश्वामित्र जी का, और साथ में इनके कॉम्पिटेटर थे वशिष्ठ जी, वो नहीं थे, ये कॉम्पिटेटर थे उनके, तो दोनों का चरित्र मिक्स करते हैं। जैसे इससे पहले चरित्र में हमने बताया परशुराम जी के चरित्र में कि गांधी जी के पुत्र विश्वामित्र जी हुए, ये चरु से हुए। ऋचिक ऋषि ने जो सत्यवती और उसकी माँ को चरु दिया था उससे उधर विश्वामित्र जी गांधी के पुत्र हुए, और ऋचिक के पुत्र यमदग्नि और यमदग्नि के परशुराम जी हुए, जो परशुराम चरित्र हमने कहा। अब गांधी जी के जो पुत्र हुए विश्वामित्र जी, ये सम्राट हुए, तो राजा थे, परंतु चरु का प्रभाव था कि तपस्वी भी होना है इन्हें, तो इन्हें अपने बल का बड़ा अहंकार था, और ये उसी बल के अहंकार में चारों तरफ घूमते रहते थे, जो मर्जी आए, जिसके साथ जो कर किया जाए वो कर देते थे। राजाओं का राजसी प्रवृत्ति होती है, तो वो अहंकार बल पे कुछ भी करते हैं और वो सब उचित लगता है उन्हें। ये घूमते फिरते एक बार ये वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुँच गए। वशिष्ठ जी ने इनका आतिथ्य स्वीकार किया, खूब सत्कार किया, और वहाँ पर इन्होंने देखा कि वशिष्ठ जी के पास में कपिला नाम की गऊ है, जो कामधेनु है, कुछ भी मांगो तो वो दे देती है, और उसी के जरिए इन्होंने उनका इतना स्वागत सत्कार किया, और यहाँ तक कि रत्न और मणियाँ तक भेंट करी इनको। तो ये देख कर इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वशिष्ठ जी के पास भी क्या ऐश्वर्य है। इन्होंने भी वही काम किया जो सहस्रा अर्जुन ने किया था, यमदग्नि ऋषि की कामधेनु गाय छीन कर। इन्होंने भी कहा कि चलो गाय उठा लेते हैं इसकी, छीनो गाय। गाय जैसे ही ये छीनने लगे, वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं किया, गाय जिसने जो भी इनको गाय को छीनने गया था उसको मारा गाय ने, वो दूर गिरा, गाय वशिष्ठ जी के पास आई। वशिष्ठ जी ने गाय से कहा कि देख, मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊँगा, आपको जो करना है स्वतः ही कीजिए। तो गाय ने अपने रोम रोम खोल दिए, रोम रोम से गाय के सेनाएं प्रकट हुई, सेनाएं निकली, और उसने विश्वामित्र की सेना को परास्त कर दिया, सब सबको मार गिराया उसने, मार गिराया। तो उनके जो विश्वामित्र जी के लड़के थे उन्होंने भी आक्रमण किया वशिष्ठ जी पे, वशिष्ठ जी अलग खड़े हुए थे, तो उन्होंने एक हुंकार भरी, हुंकार भरते ही वो गिर गए, उनके प्राण निकल गए। ये देखा प्रत्यक्ष विश्वामित्र ने कि वशिष्ठ के एक हुंकार से उनके प्राण निकल गए, निश्चेत हो गए वो, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब तक इनकी सारी सेनाएं ध्वस्त हो चुकी थी, मर चुकी थी, अकेले खड़े हुए थे विश्वामित्र। इन्हें देख लिया कि एक ब्रह्म ऋषि का प्रभाव क्या होता है, एक ऋषि का प्रभाव क्या होता है, तो इन्हें लगा कि हम ऋषि ही बनेंगे। अब इनका सारा मोह जाता रहा राज्य से, और ये भगवान शिव की उपासना करने लगे, भगवान शिव की इन्होंने कठोर उपासना करी, ये भगवान शिव की उपासना में लग गए। अब थोड़ा बात करते हैं इनके बारे में, अपना वशिष्ठ जी के। वशिष्ठ जी कौन है? ये भगवान ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए उनके प्राण से, और इंद्रियों पर इनका पूरा वश था, इसलिए इन्हें वशिष्ठ जी कहते थे, वशिष्ठ इनका नाम पड़ा, इंद्रियों को पूरी तरह इन्होंने अपने वश में कर रखा था, ब्रह्म ऋषि थे। और ब्रह्मा जी ने इनको इक्ष्वाकु कुल का पुरोहित बनाने के लिए कहा कि आप पुरोहित बनिए, इन्होंने मना कर दिया कि हम किसी की पुरोहिताई नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का पुरोहित बनने में अपना बहुत सारा तप बल नष्ट हो जाता है। इन्होंने कहा कि ये साधारण कुल नहीं है, इसमें स्वयं परमात्मा प्रकट होंगे। जब इन्होंने भगवान राम के बारे में सुना तो ये सहर्ष इन्होंने स्वीकार कर लिया, ये प्रसन्न हुए और ये इनकी पुरोहिताई करने लगे। तो आगे चल के भगवान श्री राम जी आए इसी वंश में। यही नहीं थे, वशिष्ठ जी ने इतने चमत्कार किए हैं अपने तप बल से कह लो, अपनी भक्ति बल से कह लो, अपने सत्संग और राम नाम जप बल से कह लो, उन्होंने इतने चमत्कार करके दिखाए। राम जी के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिता अज्जी थे, अज के पिता थे रघु जी और रघु जी के पिता थे दिलीप जी। तो दिलीप जी को ये कहा गया था कि रघु जी का ब्याह जब होगा और सातवां भंवर पड़ेगा, सातवां फेरा पड़ेगा, तो इनका सर फटेगा, मर जाएंगे। तो वो रघु जी की ब्याह ही नहीं कर रहे थे, शादी नहीं कर रहे थे उनका। वशिष्ठ जी को पता चला, वशिष्ठ जी ने कहा अरे आप ब्याह कीजिए, हमें कैसे होगा तो देखो, हम देखते हैं। चलो ब्याह इनका शुरू हुआ। विवाह में जब सात फेरे होते हैं, चार फेरे जब संपन्न हुए तो वशिष्ठ जी ने रोका और रघु जी को कहा कि हमारी पूजा करो। उन्होंने आचार्य की, अपने गुरुदेव की पूजा करी, तो इन्होंने उसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। फिर जब फेरा शुरू हुआ तो इस बार इन्होंने जो कन्या थी, कन्या को आगे कर दिया और वर को पीछे कर दिया। तो चार फेरों के बाद कन्या आगे हुई और जो फेरों को काउंट किया, 1 2 3 एक दो तीन किया, 5 6 7 नहीं किया चार के बाद, 1 2 3 यानी 3 फेरे कन्या को आगे करके किए। और वहीं से ये प्रचलन हुआ है 7 फेरों का, 4 फेरों में वर आगे रहता है और 3 फेरों में कन्या आगे रहती है। ये वशिष्ठ जी ने कराया था कि आज ये मान्यता है इसकी। उस टाइम तो रघु जी को वैसा उनकी कुंडली में योग था। अब ये बोलते हैं कि अगर वर या वधु पे कुछ भी अगर आपत्ति हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये करके, मतलब एक बार वर को आगे करके एक बार वधु को आगे करके, जो कुछ भी अगर इन पे दोष होंगे वो दोष मिट जाते हैं। इस कारण से एक बार वर को आगे किया जाता है, एक बार वधु को। इन्होंने किया, उनको आशीर्वाद दिया, उनको कुछ नहीं हुआ। ये वशिष्ठ जी का प्रभाव। वशिष्ठ जी ने तो बहुत ऐसे कार्य किए हैं। उन्होंने बताया आपको कि वैवस्व मनु की जो पुत्री थी ईला, ईला को उन्होंने सुद्युम्न बनाया था। फिर वो शिवजी के प्रताप से उन्होंने फिर दोबारा उसको पुरुष बनाया, सुद्युम्न। तो इनके अनंत हैं, इनके चरित्र ऐसे कि जिन्होंने अनंत चमत्कार किए हैं वशिष्ठ जी ने। अब फिर आते हैं विश्वामित्र जी पे। विश्वामित्र जी कठोर तपस्या की उन्होंने शिवजी की और शिवजी प्रसन्न हुए, शिवजी प्रकट हुए, बोलो क्या वरदान चाहिए। उन्होंने बोला जी हमें ऐसी धनुर्विद्या दीजिए कि हम सबको परास्त कर डालें। धनुर्विद्या दी, हमारे सामने गंधर्व, यक्ष, देवता कोई भी ना टिक सके। इन्होंने वरदान दिया, जाओ। वरदान लेते ही सीधे इन्होंने मुनि के ही आश्रम पे आक्रमण किया, सारा ध्वस्त कर दिया, बंजर बना दिया पूरा आश्रम। जितने ऋषि मुनि थे नष्ट भ्रष्ट कर डाले वहाँ पे। कुछ जो मुनि बचे हुए थे उन्होंने देखा, वशिष्ठ जी आए, इन्होंने देखा अरे क्या कर दिया विश्वामित्र ने। इन्होंने अपना ब्रह्मतंड निकाला और ये अड़ गए वशिष्ठ जी उसके सामने कि आ दिखाते हैं हम तुम्हें। उन्होंने ब्रह्मदंड से उसकी सारी शक्ति छीन ली और सारे अस्त्र शस्त्र उसके ध्वस्त कर दिए। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया विश्वामित्र ने। इन्होंने अपने ब्रह्मदंड से उसको भी शांत कर दिया और इनके शरीर से जो ब्रह्म तेज निकला उसको वो सहन भी नहीं कर सका विश्वामित्र और भाग गया वो छोड़ के। उसको लगा मुझे ब्रह्म ऋषि बनना पड़ेगा, जैसे ये ब्रह्म ऋषि है। ये कॉम्पिटिशन चल रहा है इनमें, उसमें विश्वामित्र में वो कंपटीशन, वो राजपाट छोड़ दिया उसने कंपटीशन की जगह, मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। उसने कठोर तपस्या की। अब पुष्कर तीर्थ में जाके ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा ऋषि कहके इनको, राजर्षि इनको कहकर संबोधन किया कि तुम राजर्षि हो। इनको आश्चर्य हुआ 1000 वर्ष की तपस्या में भी मैं राजर्षि बना हूं अभी तक। इन्होंने फिर से तपस्या शुरू कर दी, तपस्या घोर तपस्या इन्होंने फिर से तपस्या की। तो इधर एक अयोध्या के राजा थे त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी को कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे सशरीर कोई ऐसा यज्ञ कराइए कि जिससे मैं सशरीर स्वर्ग पहुँच जाऊँ। इन्होंने अनुचित समझा कि ये सब अनुचित है, सशरीर स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो हम ऐसा यज्ञ नहीं करेंगे। फिर त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी के पुत्रों को कहा कि भाई आप करा दो, आपके पिताजी तो करा नहीं रहे। उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना किया तो त्रिशंकु कहने लगा मैं किसी और पुरोहित को हायर करूँगा, किसी और पुरोहित से करा लूँगा, तो तुम करते हो तो कर दो, नहीं तो। बोले अच्छा मैं धमकी देगा, तो उन्होंने जल लिया हाथ में और उसके ऊपर छिड़क के बोले चंडाल बन जा, हमारे पिताजी की अवहेलना करता है हमारे सामने, चंडाल बन। वो चंडाल गति को प्राप्त हो गया, चंडाल हो गया। तो वो वापस फिर वो घूम फिर के जब उसे कोई सहारा नहीं मिला तो ये तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र। उसे पता चला कि इनके कंपटीशन में विश्वामित्र है, वो कोई मदद कर सकते हैं, तो वो सीधे विश्वामित्र के पास पहुंच गए कि महाराज हमारी मदद कीजिए। बोला क्या? बोला हमें सशरीर स्वर्ग जाना है। एक तो ये पहले से राजा भी नहीं रहे, चंडाल बन चुके हैं, चंडाल को भी सशरीर पहुँचाना है। ये बोला हम पहुँचा देंगे भाई, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटेटर हैं उन्होंने अगर आपको मना किया तो हम पहुँचाएंगे, हमारी शक्ति है इतनी। इन्होंने यज्ञ का आयोजन कर दिया, बहुत सारे ऋषि इकट्ठे किए और ऋषियों से इकट्ठा करके यज्ञ का आयोजन करके यज्ञ कराना शुरू कर दिया इन्होंने, कुछ इनकी तपस्या का प्रभाव। लेकिन एक भी देवता नहीं आया अपना भाग लेने के लिए, यज्ञ विफल हो गया। इन्हें लगा कि कोई देवता नहीं आ रहा है तो हम अपने तप के बल से तुम्हें पहुंचाएंगे, जब हमने वादा किया है तुम्हें पहुंचाने का तो हम अपने वादे से मुखर नहीं होंगे। तो इन्होंने अपने तप के बल से सशरीर स्वर्ग भेज दिया त्रिशंकु को। त्रिशंकु स्वर्ग में पहुंचा, इंद्र ने उसको जान करके कि भाई ये तो अनुचित कार्य है, ऐसे तुम ठहर ही नहीं सकते यहाँ पर सशरीर मनुष्य और ऊपर से चरणलाल बने, तो उसको धक्का दे दिया वापस नीचे, जा ये स्वर्ग में नहीं रह सकता। वो जब नीचे गिरने लगा, इन्होंने अपनी तप के बल से उसे नीचे नहीं गिरने दिया, बीच में लटका दिया, बोला रुको तुम्हारे लिए बीच में ही हम स्वर्ग का निर्माण करते हैं अपनी तप के बल से और अपनी तपस्या के बल से बीच में ही एक दूसरा स्वर्ग बनाना इन्होंने शुरू किया। लेकिन ऋषि मुनि सब ने आके इनको मना कर दिया, भाई क्या उल्टा काम कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो सृष्टि के विरुद्ध है, तो ये काम नहीं करना। तो बोला चलो ठीक है। त्रिशंकु आज भी वहीं लटका हुआ है, ऐसा कहते हैं कि त्रिशंकु ऐसे ही लटका हुआ है, इन्हें अपने तप के बल से आने नहीं दिया, वो तप का बल वहीं छोड़ दिया इन्होंने। अब इनका ये तप का बल जो इन्होंने दोबारा 1000 वर्ष की तपस्या की थी वो भी विफल हो गया, फिर से बेचारे तप में लगे। इन्होंने फिर पुष्कर धाम में जाके कठोर तप किया, इन्होंने फिर 1000 वर्ष का ही तपस्या में थे। इधर इनके ऋचिक ऋषि का जो दूसरा बेटा था, मझला बेटा था शुने शेप, उसको अम्बरीश ऋषि, क्योंकि अम्बरीश ऋषि का जो चरु पशु था वो इंद्र ने हरण कर लिया था, तो उसको खरीद करके 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 1 लाख गाय में ये शुने शेप अम्बरीश खरीद के ले जा रहे थे, और ले जा रहे थे उसी क्षेत्र से जहाँ ये तपस्या कर रहे थे। तो शुने शेप ने रास्ते में देखा कि मेरे मामा बैठे हुए हैं विश्वामित्र जी, तो उन्होंने आवाज़ लगाई, महाराज मुझे बचा लीजिए, मामा मुझे बचाइए। उसने सारी ज्ञात हुआ क्या क्या हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने अपनी तपस्या के बल से शुने शेप को बचा लिया। इस बार का तपस्या का बल इनका सारा खर्च हो गया शुने शेप को बचाने में, अपने तप के प्रभाव से इन्होंने दूसरा इंद्र को प्रसन्न किया, इंद्र को प्रसन्न करके वो छुड़ाया और अम्बरीश जी को प्रसन्न करके, तो वो पूरा का पूरा इनका जो है पूरा तप वो उसमें चला गया इनको दूसरा यज्ञ पशु देने में, ये भी इनका समाप्त हो गया। फिर से ये लगे तप करने, इन्होंने 1000 वर्ष की फिर से तपस्या प्रारंभ कर दी, ऐसी कठोर तपस्या की। इन्होंने कठोर तपस्या देख कर इंद्र का सिंहासन डोला, इंद्र का सिंहासन डोला। उसे पता चल गया कि विश्वामित्र तपस्या करा, कहीं तेरे राज्य ना छीन ले, उसे तो अपने राज्य की पड़ी रहती है इंद्र जी को। तो इंद्र भगवान को जैसे लगा कि चलो भाई भेजो मेनका को भेजा। मेनका आई वहाँ पर टहलते हुए, तो उस टाइम इन्हें अपनी तपस्या से जागे, इन्होंने देखा मेनका को, ये भूल गई तपस्या, और इन्होंने सीधे मेनका के साथ इन्होंने विहार सहवास शुरू किया और इनकी वो तपस्या ले डूबी मेनका। तो आगे फिर से दूसरे पार्ट में करते हैं क्योंकि लंबा चरित्र है, अगले पार्ट में यहीं से आगे की कथा करेंगे कि ये ब्रह्मऋषि बन पाते हैं तो क्या ये वशिष्ठ जी के कंपटीशन में खरे उतरते हैं, कि वैसी ही शक्ति क्या इनमें आ पाती है, यही देखते हैं अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए राधे राधे, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।